प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हम कक्षा आठवीं की सामाजिक विज्ञान में 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम फोर्थ अध्याय, चौथा अध्याय भूमि संसाधन और कृषि, इसके बारे में अध्ययन शुरू करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुने और याद करें। प्रकृति ने हमें अनेक प्राकृतिक संसाधन निःशुल्क उपलब्ध कराए। प्रकृति ने हमें अनेक प्रकार के संसाधन निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं, उनमें से भूमि भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। तो भूमि क्या है? भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% भाग ही ऐसा है जहाँ कृषि होती है। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि होती है? 11% भूभाग पर ही कृषि होती है, क्योंकि विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या के वितरण में समानता नहीं है और सभी क्षेत्रों में भूमि और जलवायु में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। भूमि और जलवायु में भी समानता नहीं है। कई उबड़ खाबड़ भू आकृति, पर्वतीय ढाल, कई दलदली निम्न भाग, रेतीला क्षेत्र और कहीं पर अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं जहां पर जनसंख्या कम निवास करती है। जबकि नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने के कारण वहां पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जो मैदानी भागों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि वहां पर नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ जलोढ़ मैदान होते हैं जिससे कृषि कार्य किया जा सकता है। स्वामित्व के आधार पर हम भूमि को 2 भागों में बांट सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला, निजी सामुदायिक भूमि। जनसंख्या वृद्धि के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता जाता है, क्योंकि भूमि संसाधन सीमित है। समय के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में भी अंतर होता है, इसलिए भूमि के उपयोग में भी अंतर पाया जाता है। मानव प्राचीन समय में जिस भूमि पर चारागाह, सामुदायिक वन और औषधीय जड़ी बूटियों को एकत्र करता रहा है, आज इस भूमि पर व्यापारिक गतिविधियां, नगरीय क्षेत्र में आवास एवं ग्रामीण क्षेत्र में कृषि करने हेतु अनाधिकृत हस्त से प्रारंभ हो चुका है। इसे ही हम भूमि उपयोग परिवर्तन कहते हैं। भूमि उपयोग परिवर्तन किसे कहते हैं? जिस भूमि पर व्यापारी गतिविधियां, नगरीय क्षेत्र में आवास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि करने हेतु अनाधिकृत हस्त से प्रारंभ हो चुका है, इसे ही हम भूमि उपयोग परिवर्तन कहते हैं। भूमि संसाधन की उपयोगिता पर उस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करती है। भूमि की उपयोगिता भी उस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करती है। स्थल रूपों के अनुसार मिट्टी का भी प्रकार बदल जाता है। मिट्टी का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों और भूमि पर पाए जाने वाले कई अन्य तत्वों से होता है। ये बड़ी चट्टानों के छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में बंटने की प्रक्रिया से बनती है। खनिज पदार्थों एवं ह्यूमस का सही मिश्रण मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। खनिज पदार्थों एवं ह्यूमस का सही मिश्रण ही मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। धरातल पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत, जिसमें ह्यूमस भी मिला होता है, को मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी किसे कहते हैं? धरातल पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जिसमें ह्यूमस भी मिला होता है उसे मिट्टी कहा जाता है। सामान्य रूप में धरातल की ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं। वनस्पति एवं जीवों के सड़े गले अंश को ह्यूमस कहते हैं। वनस्पति एवं जीवों के सड़े गले अंश उसे ह्यूमस कहते हैं। मिट्टी को सामान्यतः दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मिट्टी को सामान्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, पहला रंग के आधार पर और दूसरा प्रकृति के आधार पर। रंग के आधार पर जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी आदि। दूसरा प्रकृति के आधार पर जैसे दोमट या जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लवणीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। हमारे राज्य के उत्तरी पूर्वी मैदान में जलोढ़ मिट्टी का जमाव अधिक है, तो वही पश्चिमी राजस्थान में थार मरुस्थल में रेतीली मिट्टी अधिक पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी। दक्षिणी पूर्व के हाड़ौती प्रदेश में काली मिट्टी की अधिकता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल लोमी एवं लाल काली मिट्टी मिलती है। नहरी क्षेत्रों में क्षारीय मिट्टी की अधिकता है। नहरी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी की अधिकता है? क्षारीय मिट्टी की अधिकता। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्व मिट्टी के निर्माण को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? पहला जनक शैलें, दूसरा जलवायु, तीसरा उचावच, चौथा समय और पांचवा जैविक क्रिया है। जनक शैलें, जलवायु, उचावच यानी तापमान, समय और जैविक क्रियाएं मिट्टी को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कृषि। कृषि क्या है? मिट्टी में फसल उगाने की कला को कृषि कहा जाता है, और जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं वह कृषि भूमि कहलाती है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान माना जाता है, क्योंकि राज्य में कृषि सबसे अधिक लोगों के रोजगार और आजीविका का स्रोत है। जनसंख्या वृद्धि के कारण किसानों के पास कृषि भूमि की जोत का आकार बदल रहा है, जिसका प्रमुख कारण पिता की संपत्ति का सभी संतानों में बंटवारा, समान बंटवारा है, जिससे एक खेत भाइयों की संख्या के अनुसार कई टुकड़ों में बट जाता है। कृषि एक प्रकार की प्राथमिक क्रिया है, क्योंकि प्राथमिक क्रियाओं में उन सभी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और उपभोग से हैं। कृषि में फसल, फल फूल एवं सब्जियां उगाना और पशुपालन व्यवसाय को सम्मिलित किया जाता है। तो कृषि में फसल है, फल फूल एवं सब्जियां उगाना है, और पशुपालन व्यवसाय भी कृषि में ही शामिल किया जाता है। कृषि उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु स्थलाकृति और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। जहाँ तक अध्ययन किया है, इस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर लिखें उनके। पहला प्रश्न लिखें, विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? आंसर लिखें, विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग 11% भाग पर कृषि होती है। विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग 11% भाग पर ही कृषि होती है। दूसरा प्रश्न लिखें, स्वामित्व के आधार पर भूमि को कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है? स्वामित्व के आधार पर भूमि को कौन से दो भागों में बांटा गया है? आंसर लिखें, निजी भूमि, और दूसरा लिखें सामुदायिक भूमि। स्वामित्व के आधार पर भूमि के दो भाग, पहला निजी भूमि और दूसरा सामुदायिक भूमि। तीसरा प्रश्न लिखें, मिट्टी किसे कहा जाता है? मिट्टी किसे कहा जाता है? आंसर लिखें, धरातल पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की धरातल पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत रेखांकित करें, ऊपरी परत जिसमें ह्यूमस भी मिला होता है उसे मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न लिखें, पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर लिखें रेतीली मिट्टी। पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न लिखें, मिट्टी को सामान्य रूप से कितने आधारों में वर्गीकृत किया जा सकता है? मिट्टी को सामान्य रूप से कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? उत्तर लिखें, मिट्टी को सामान्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, पहला रंग के आधार पर और दूसरा प्रकृति के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न लिखें, अगला प्रश्न लिखें, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले दो कारक लिखिए। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले दो कारक लिखिए। उत्तर लिखें, पहला कारक जलवायु और दूसरा लिखें समय। जलवायु और समय। अगला प्रश्न लिखें, अंतिम प्रश्न, कृषि किसे कहा जाता है? कृषि किसे कहते हैं? उत्तर लिखें, मिट्टी में फसल उगाने की कला को कृषि कहते हैं। मिट्टी में फसल उगाने की कला को कृषि कहते हैं। अगली क्लास में हम कृषि के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो भी प्रश्न लिख आए हैं उसको अच्छी तरीके से याद करें। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।